पृष्ठ संख्या 51। प्रथम विश्व युद्ध। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद। यूरोप के अंदर प्रबल होता उग्र राष्ट्रवाद और वैर विरोध तथा तनाव टकराव, परस्पर विरोधी संधि संबंधों की स्थापना और बढ़ता हुआ सैन्यकरण तथा युद्ध की सरगर्मी भरी तैयारियां, ये बातें 19वीं सदी के अंतिम दशक से यूरोप के इतिहास की कुछ खास विशेषताओं के रूप में सामने आई थी। इस बीच कई संकट उपस्थित हुए थे, लेकिन कम से कम अस्थायी रूप से उनका समाधान कर दिया गया। तथापि यूरोप में फैले तनाव के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें युद्ध होना अटल माना जाने लगा। हर राज्य अपनी युद्ध योजनाओं तथा रणनीतियों के साथ तैयार बैठा था। यह बात भी अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि अगर लड़ाई छिड़ी तो उसे सीमित रख पाना संभव नहीं होगा और वह एक आम लड़ाई का रूप ले लेगी जिसमें हर देश शामिल हो जाएगा। तत्कालिक कारण, 28 जून 1914 को सराएवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चर ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की हत्या हो गई, जिसने युद्ध छिड़ने में तत्कालिक कारण का काम किया। सराएवो, जहां वे हत्या की गई थी, बोस्निया की राजधानी थी। अभी कुछ ही साल पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन हत्याओं की योजना ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ नामक एक गुप्त संस्था ने बनाई थी। यह उग्रपंथी सर्बियाई राष्ट्रवादियों की संस्था थी। इन राष्ट्रवादियों का लक्ष्य भी सभी सर्बियाइयों को एक सर्बियाई राज्य के रूप में संगठित करना था। इतिहासकार आमतौर पर इस बात से सहमत है कि सर्बिया की सरकार या कम से कम सर्बिया के प्रधानमंत्री को आर्चड्यूक की हत्या के षड्यंत्र की खबर थी, लेकिन इसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऑस्ट्रिया हंगरी को इन हत्याओं में सर्बिया की मिलीभगत होने का पूरा यकीन था, इसलिए 23 जुलाई को उसने सर्बिया पर अंतिम चेतावनी ठोक दी जिसमें 11 मांगें रखी गई थी। ऑस्ट्रिया को इन मांगों के स्वीकार किए जाने की आशा नहीं थी, इसलिए उसने इनका बिना शर्त स्वीकृति के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय कर दी। सर्बिया ने तो सभी लेकिन ज्यादातर मांगे स्वीकार कर ली। सभी मांगों की स्वीकृति का मतलब होता सर्बिया का पूर्ण रूप से अपनी प्रभुसत्ता से वंचित होना। सर्बिया के 25 जुलाई के उत्तर से ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ। सर्बिया को एहसास हुआ कि ऑस्ट्रिया संतुष्ट होगा भी नहीं, सो उसने अपने सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। उधर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के जवाब को अस्वीकार करते हुए उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तत्काल लामबंद हो जाने का आदेश दे दिया। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने जर्मन सम्राट के नाम अपने पत्र में लिखा कि ऑस्ट्रिया मेरे राजघराने और मेरे प्रदेशों के लिए इस अस्थाई खतरे को सदा के लिए समाप्त कर देने को कृत संकल्प है। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 29 जुलाई को ऑस्ट्रियाई सेना ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बमबारी की। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद दो और लड़ाइयां छिड़ गई और सैनिक दृष्टि से इन तीनों लड़ाइयों के आपस में जुड़ जाने से आम लड़ाई अथवा प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध बंद करने के लिए ऑस्ट्रिया पर दबाव डालने हेतु रूस ने उसके खिलाफ लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का विस्तार हो यह रूस को बर्दाश्त नहीं था। बाल्कन क्षेत्र में इसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और अगर सर्बिया हार जाता तो उसकी इन महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर सकता था। अगर रूस ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में उतरता तो ऑस्ट्रिया की मदद में जर्मनी का आगे आना तय था, इसलिए रूस ने जर्मनी के खिलाफ भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी को विश्वास था कि यदि रूस के साथ उसकी लड़ाई हुई तो फ्रांस उसके खिलाफ रूस का साथ देगा। इसका मतलब यह होगा कि जर्मनी को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, पश्चिम में फ्रांस के खिलाफ और पूरब में रूस के विरुद्ध। इस लड़ाई में कामयाब होने के लिए जर्मनी ने एक त्वरित युद्ध में पहले फ्रांस को हराने की योजना बनाई और अपनी अधिकांश सेना इसी उद्देश्य से लामबंद किया। इसके बाद उसका इरादा रूस की ओर मुड़ने का था और वह जानता था कि रूस पर जल्दी जीत नहीं हासिल हो पाएगी। इस प्रकार दूसरी लड़ाई एक और ऑस्ट्रिया जर्मनी और दूसरी ओर रूस और फ्रांस के बीच होने जा रही थी। ब्रिटेन की स्थिति अब भी अस्पष्ट थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में शामिल होने के बारे में मतभेद था। जब फ्रांस ने उससे मदद मांगी तो जवाब में उसने वादा किया कि जर्मनी के खिलाफ उसके उत्तरी तट की वह रक्षा करेगा। लेकिन जर्मनी ने जब तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन की दुविधा समाप्त तो हो गई और जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस प्रकार पिछले वर्षों के दौरान जो प्रतिद्वंद्वी संधि संबंध स्थापित किए गए थे वे अब अपना रंग दिखाने लग गए। केवल इटली ही जो त्रिपक्षीय संधि संगठन ट्रिपल अलायंस का सदस्य था तटस्थ रहा। उसका तर्क था कि जर्मनी चूंकि रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ रहा है इसलिए उसकी मदद करने के लिए वह बाध्य नहीं है। युद्ध का विस्तार। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध। 4 अगस्त को सुबह जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया और उसी दिन आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। इस बीच सर्बिया और ऑस्ट्रिया की लड़ाई, जिसके कारण जर्मनी, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देश युद्ध में जा फंसे, गौण होती जा रही प्रतीत हो रही थी। 6 अगस्त तक ऑस्ट्रिया के रूस के साथ लड़ाई नहीं थी और 12 अगस्त तक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी नहीं थी। इस बीच दोनों पक्ष विभिन्न देशों को प्रादेशिक लाभ का लोभ देकर उन्हें अपने अपने साथ लाने की कोशिश में लगे हुए थे। अगस्त में ही जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसने ब्रिटेन के साथ एक संधि की थी लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन प्रभाव वाले प्रदेशों को हथियाना था। पुर्तगाल भी, जिसे ब्रिटेन अक्सर अपना सबसे पुराना मित्र कहता था, लड़ाई में शामिल हो गया। मई 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेशों देने का वादा किया था। बाद में रोमानिया और यूनान, ग्रीस भी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ हो लिए। अपने साथियों के साथ ये देश मित्र शक्तियों के रूप में विख्यात हुए। बुल्गारिया अक्टूबर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गया। उसे सर्बिया तथा यूनान के प्रदेश देने का लोभ दिया गया था और तुर्की के कुछ इलाके भी दे दिए गए थे। नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वह जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया की ओर से लड़ाई में शामिल हो गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया तथा उसके मित्र देश केंद्रीय शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। दुनिया के अन्य हिस्सों के भी कई देश लड़ाई में शामिल हो गए। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों की ओर से लड़ाई में शामिल हो गया। युद्धरत देशों की संख्या कुल मिलाकर 27 तक पहुंच गई। इनमें सभी महाद्वीपों के देश शामिल थे। इस प्रकार लड़ाई के क्षेत्र का विस्तार हुआ। इस लड़ाई के लिए लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया गया था। इनमें से 4.2 करोड़ से अधिक मित्र शक्तियों द्वारा लामबंद किए गए थे और 2.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय शक्तियों द्वारा।